जिनके पास प्रचुर भौतिक संपत्ति है उनके लिए देव अर्चन विधि की प्रबल संस्तुति की जाती है। जो ऐसा ऐश्वर्यवान गृहस्थ भक्त अपनी कठिन कमाई की पूंजी भगवान की सेवा में नहीं लगाता वह कंजूस कहलाता है। मनुष्य को चाहिए कि देव अर्चन के लिए वेतन भोगी ब्राह्मण न लगाए। यदि कोई स्वयं अर्चन न करके वेतन भोगी नौकर लगाता है तो वह आलसी माना जाता है और उसकी देव पूजा कृत्रिम मानी जाती है। ऐश्वर्यवान गृहस्थ के लिए देव पूजा अनिवार्य है। हमारे कृष्ण भावनाविद आंदोलन में ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ तथा सन्यासी होते हैं, किंतु मंदिर में देव पूजा का कार्य विशेषतया गृहस्थों द्वारा संपन्न किया जाता है। ब्रह्मचारी गण सन्यासियों के साथ प्रचार कार्य में जा सकते हैं और वानप्रस्थों को अगले आश्रम सन्यास की तैयारी करते रहना चाहिए, किंतु गृहस्थ भक्त समानतया भौतिक कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। अतः यदि वे देव पूजा नहीं करते तो उनका पतन निश्चित है। देव पूजा का अर्थ है विधि विधानों का सही सही पालन करना। इससे मनुष्य भक्ति में स्थिर रहा आता है। समानतया गृहस्थ के बच्चे होते हैं और तब गृहस्थ की पत्नियों को अपने बच्चों के पालन पोषण में उसी तरह व्यस्त रहना चाहिए जिस तरह नर्सरी स्कूल में बच्चों की देख रेख के लिए अध्यापिकाएं होती हैं। गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वे गुरु द्वारा दिए गए आदेशों तथा उपयुक्त प्रबंधों द्वारा अर्चन विधि या देव पूजन करें। जो लोग मंदिर में अर्चन नहीं कर सकते उनके लिए अग्नि पुराण का यह कथन है कि यदि कोई गृहस्थ भक्त परिस्थितिवश अर्चन नहीं कर सकता तो उसे चाहिए कि कम से कम अर्चन होते देखें और इस तरह वह भी सफलता प्राप्त करते हैं। अर्चन का विशेष प्रयोजन अपने आप को शुद्ध तथा स्वच्छ रखना है। गृहस्थ भक्तों को स्वच्छता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। अर्चन को श्रवण तथा कीर्तन के साथ साथ करते रहना चाहिए। अतः प्रत्येक मंत्र के पूर्व नमः शब्द आता है। सभी मंत्रों में विशिष्ट शक्तियां होती हैं जिनका लाभ गृहस्थों को उठाना चाहिए। ऐसा अनेक मंत्र हैं जिनके पूर्व नमः शब्द आता है, किंतु यदि कोई भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करता है तो वह नमः के कई बार उच्चारण करने का फल पाता है। भगवान के नामोच्चारण से भगवत प्रेम के पद तक पहुंचा जा सकता है। इस प्रकार कोई यह प्रश्न कर सकता है तो फिर दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है कि जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है, किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य की कर्मस ग्रस्त हो जाता है। फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पांच रात्रि की विधि इन दोनों का ही लाभ उठाए। अर्चन के दो विभाग हैं, शुद्ध एवं सकाम कर्मों से मिश्रित। जो स्थिर है उसके लिए अर्चन अनिवार्य है। इसी अर्चन विधि के अंतर्गत श्री जन्माष्टमी, रामनवमी तथा श्री नृसिंह चतुर्दशी जैसे नाना प्रकार के उत्सवों का मनाना सम्मिलित है। दूसरे शब्दों में गृहस्थ के लिए इन उत्सवों को मनाना आवश्यक है। अब हम अर्चन में होने वाले अपराधों की विवेचना करेंगे। ये अपराध हैं: पहला, जूते पहनकर या पालकी में चढ़कर मंदिर के भीतर जाना। दूसरा, मान्य उत्सवों को ना मानना। तीसरा, देवों को नमस्कार करने से कतराना। चौथा, खाने के बाद हाथ धोए बिना अशुद्ध अवस्था में ही प्रार्थना करना। पांचवा, एक हाथ से नमस्कार करना। छठा, देव के समक्ष परिक्रमा करना। सातवां, देव के सामने पांव पसारना। आठवां, एक हाथ से पांव का टखना पकड़कर देव के समक्ष बैठना। नौवां, देव के समक्ष लेटना। दसवां, देव के समक्ष भोजन करना। ग्यारहवां, देव के समक्ष झूठ बोलना। बारहवां, देव के समक्ष किसी को जोर से पुकारना। तेरहवां, देव के समक्ष अनर्गल बातें करना। चौदहवां, देव के समक्ष चिल्लाना। पंद्रहवां, देव के समक्ष वाद विवाद करना। सोलहवां, देव के समक्ष किसी को दंड देना। सत्रहवां, देव के समक्ष ऊनी कंबल ओढ़ना। अठारहवां, देव के समक्ष कपट वचन कहना। उन्नीसवां, देव के समक्ष किसी का पक्ष लेना। बीसवां, देव के समक्ष किसी की निंदा करना। इक्कीसवां, देव के समक्ष किसी को पूजना। बाईसवां, देव के समक्ष अश्लील भाषा का प्रयोग करना। 23वां देव के समक्ष अपान वायु निकालना, 24वां समर्थ होते हुए भी ठाट बाट से देव की पूजा करने से कतराना, 25वां देवता को चढ़ाए बिना कोई वस्तु खाना, 26वां ऋतु के अनुसार देव पर फल न चढ़ाना, 27वां देव को चिष्ट भोजन या किसी अन्य को दिया गया पदार्थ अर्पित करना, 28वां देव की ओर पीठ फेर कर बैठना, 29वां देव के समक्ष अन्य किसी को नमस्कार करना, 30वां गुरु को नमस्कार करते हुए सारी स्तुति का उच्चारण न करना, 31वां देव के समक्ष आत्म प्रशंसा करना, 32वां देवताओं की निंदा करना। अर्चना विधि या देव पूजन में इन 32 अपराधों से बचना चाहिए। परापुराण में निम्नलिखित अपराधों का लेख हुआ है, धनी व्यक्ति के घर भोजन करना, अंधेरे में देव के समक्ष कक्ष में प्रवेश करना, विधि विधानों का पालन न करते हुए देव की पूजा करना, बिना शब्दोच्चारण किए मंदिर में प्रवेश करना, कुत्ते द्वारा देखा गया भोग एकत्र करना, देव पूजा करते समय मौन भंग करना, देव पूजा के बीच शौचालय के लिए जाना, बिना पुष्प अर्पित किए अगुरु चढ़ाना, वर्जित फलों से अर्चना करना, दांत साफ किए बिना पूजा करना, मैथुन के बाद पूजा करना, दीपक शव या रजस्वला स्त्री को स्पर्श करना या लाल नीले कपड़े पहनना या किसी के पहने अथवा गंदे कपड़े धारण करना, अन्य अपराधों में शव को देखने के बाद अर्चन करना, देव के समक्ष अपान वायु निकालना, देव के समक्ष क्रोध करना और शमशान घाट से लौटकर तुरंत देव पूजा करना सम्मिलित है। खाने के बाद जब तक भोजन पच ना जाए तब तक न तो देव की पूजा करनी चाहिए, न देव का स्पर्श करना चाहिए, न कुसुम तेल या हींग खाने के बाद देव पूजन करना चाहिए। अन्य निम्नलिखित अपराधों की सूची मिलती है, वैदिक साहित्य के शास्त्रीय आदेशों के विरुद्ध होना अथवा हृदय में श्रीमद् भागवत का अनादर करना और ऊपर से इसके सिद्धांतों को मानना, शास्त्रों से असहमति व्यक्त करने का प्रचार करना, देव के समक्ष पान चबाना, रेड के पत्ते पर पूजा के लिए फूल रखना, दोपहर के बाद देव पूजन करना, वेदी पर या फर्श पर बैठकर बिना आसन के देव पूजन करना, देव को स्नान कराते समय बाएं हाथ से उनका स्पर्श करना, देव पर बासी या चढ़ाए हुए फूल चढ़ाना, देव पूजन के समय थूकना, देव पूजन के समय अपने वैभव का विज्ञापन करना, मस्तक पर टेढ़ा तिलक लगाना, बिना पाँव धोए मंदिर में प्रवेश करना, अधीक्षित व्यक्ति द्वारा पकाए गए भोजन को देव पर चढ़ाना, अधीक्षित व्यक्ति या वैष्णव के समक्ष देव पूजा करना तथा देव को भोग लगाना, गणेश आदि वैकुंठ देवों को पूजे बिना देव का पूजन करना, पसीने से लथपथ होकर पूजा करना, देव पर चढ़े फूलों को लेने से इनकार करना, भगवान के नाम की शपथ लेना। यदि कोई इन अपराधों में से एक भी अपराध करता है तो उसे भगवत गीता का कम से कम एक अध्याय पढ़ना चाहिए। इसकी पुष्टि स्कंद पुराण के अवंती खंड में भी की गई है। इसी प्रकार एक अन्य आदेश है कि जो विष्णु सहस्र नाम का पाठ करता है वह सभी अपराधों से मुक्त हो जाता है। उसी स्कंद पुराण में रेवा खंड में कहा गया है कि जो तुलसी की स्तुति करता है या तुलसी का बीज बोता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। इसी प्रकार जो शालिग्राम शिला को पूजता है वह भी सारे अपराधों से छूट जाता है। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि जो शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करने वाले चतुर्भुज विष्णु की पूजा करता है वह प्रयुक्त समस्त अपराधों से मुक्त हो जाता है। आदि वराह पुराण में कहा गया है कि सारे व्यक्ति मन से पूजा कर सकते हैं। गौतमीय तंत्र का कहना है कि गृह विहीन सन्यासी के लिए मन के भीतर देव की अर्चना की संस्तुति की जाती है। नारद पंचरात में भगवान नारायण ने कहा है कि मन के भीतर देव पूजा मानस पूजा कहलाती है। इस विधि से मनुष्य चारों कष्टों से मुक्त हो सकता है। कभी कभी स्वतंत्र रूप से मन द्वारा पूजा की जाती है। नव यज्ञेंद्रों में से एक आविर्होत्र मुनि के आदेशानुसार सारे मंत्रों को उच्चारण करके देव पूजा की जाती है। शास्त्र में 8 प्रकार के देवों का उल्लेख है। इस प्रसंग में ब्रह्मवर्तक पुराण का निम्नलिखित वर्णन दिया जा रहा है। बहुत पहले प्रतिष्ठानपुर में एक ब्राह्मण रहता था जो अत्यंत गरीब किंतु अबोध था, पर वह असंतुष्ट नहीं रहता था। एक दिन ब्राह्मणों की एक सभा में उसने एक वार्तालाप सुना जो मंदिर में देव पूजन के विषय में था। उसी सभा में उसने यह भी सुना कि देव की पूजा मन से भी की जा सकती है। इस घटना के बाद वह ब्राह्मण गोदावरी नदी में स्नान करके मन में देव पूजन करने लगा। वह अपने मन में ही मंदिर को धोता और कल्पना द्वारा सोने तथा चांदी के पात्रों में पवित्र नदियों का जल लाता। उसने पूजा की सारी सामग्री एकत्र कर ली और देव को स्नान कराने से लेकर आरती करने तक देव की अत्यंत भव्य पूजा की। इस तरह उसे महान सुख प्राप्त हुआ। जब इस तरह कई वर्ष बीत गए तो उसने अपने मन में देव पूजा के लिए खीर तैयार किया। उसने एक सुनहरे पात्र में खीर रखी और भगवान कृष्ण को भेंट कर दी, लेकिन उसे लगा कि खीर गर्म है, अतः उसने अपनी उंगली से उसे छू दिया। उसे तुरंत लगा कि उसकी उंगली गर्म खीर से जल गई है, अतः वह रोने लगा। जब ब्राह्मण को पीड़ा हो रही थी तो भगवान विष्णु वैकुंठ में हंसने लगे। इस पर लक्ष्मी जी ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि उस समय ब्राह्मण को वैकुंठ में ले आए। इस तरह उस ब्राह्मण को सामर्थ्य मुक्ति प्राप्त हो गई।
आश्रम
के विषय में श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य
श्री प्रह्लाद उवाच श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यं आत्मनिवेदनम् इति पुंसार्विदा विष्णौ भक्तिश्चन् नवलक्षणा क्रियेत भगवद्भद्रा तन्मन्ये अधीतं उत्तमम्। अधीतम्, अधीतम मीन्स लर्निंग, ग्रेट लर्निंग, टॉपमोस्ट लर्निंग, उत्तमम अधीतम।
अधीतम शब्द का अर्थ है सर्वोच्च विद्या।
सो एनीबडी हु अंडरस्टैंड्स दैट दिस नवविधा भक्ति मार्ग देन ही अलोन कैन बी कंसिडर्ड एज टॉपमोस्ट लर्नर पंडिता।
जो व्यक्ति यह समझता है कि नवदा भक्ति सब कुछ है, वह व्यक्ति माना जाना चाहिए कि वह सर्वोच्च विद्वान पुरुष है।
This is mentioned in the Shastra, in Srimad Bhagavatam, because this contains everything that needs to be learned in spiritual life.
यह जो श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन के लिए जो कुछ भी चाहिए वह इस शास्त्र में श्रीमद् भागवतम में लिखा
है। Especially devotees in this काम, when it comes to the matter of deity worship, they have their own ideas. They do not generally accept either deity worship as very important, or they falsely think that Harinam alone is important, independent of deity worship.
तो खास करके इस्कॉन के भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है भक्तों के द्वारा कि अर्चना का इतना विशेष दर्जा नहीं है, मात्र हरिनाम के द्वारा, भगवान के नाम के कीर्तन के द्वारा ही हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, इसलिए उतना उसका महत्व नहीं
है। प्रभुपाद इज वेरी क्लियरली मेंशनिंग हाउ डीटी वर्शिप विच इज कंसिडर्ड एज द पांचरात्रि की विधि is as important as deity worship in by Bhagavata Vidhi.
तो यहाँ पे आपने तात्पर्य जैसे सुना, प्रभुपाद जी जो हैं बहुत ही बल देते हैं कि पांच रात्रि विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वह जो है भागवत विधि के समान ही और भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है।
It is mentioned here there are two systems of Archana, the Bhagavata system and Pancharatriki system.
तो अर्चना का यहाँ पे दो विधियां बताई है, भागवत विधि और पांच रात्रि विधि।
You can consider Both of them ask deity worship only.
आप दोनों को जो है वो आर्चर विग्रह की सेवा के समान समझ सकते हैं।
How can we understand this? It is very simple.
तो इसको हम कैसे समझ सकते हैं? ये बहुत ही साधारण है।
Prabhupada sometimes compared with Bhagavata Marga and Pancharatriki Marga as the two rails of a train.
प्रभुपाद जी कभी कभी तुलना देते हैं जैसे कि ट्रेन की दो पटरियां होती हैं, उसी तरह भागवत विधि और पांचरात्रिक विधि वो भी दो पटरियों के समान है।
If one of the rails is not there, what will happen to the train? Can it reach the destination?
तो मान लीजिए कि एक पटरी उसमें नहीं है तो क्या होगा उस ट्रेन का? क्या वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच पाएगा?
It can never reach the destination.
वो कभी भी अपने गंतव्य को प्राप्त नहीं कर सकता।
There will be great misfortune and obstruction in reaching the destination.
तो बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति होगी और कभी भी वह स्टेशन को स्टेशन को पहुंच नहीं पाएगा।
So therefore, Srila Prabhupada, right from the beginning of ISKCON, from the day he wanted to make a society called the International Society for Krishna Consciousness. He was always talking about deities, Aksha Vigraha.
इसलिए हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद शुरुआत से ही जब स्कॉन की स्थापना करी तो शुरू के दिनों से ही वह आर्चर विग्रह पूजन के लिए जोर देते थे।
श्रील प्रभुपाद in his great ripe old age, he has reached America and from there, what is he writing to his god brothers in the form of letters? What is he writing?
तो प्रभुपाद जी अपने पूर्ण वृद्धावस्था में अमेरिका जाते हैं, वहां से अपने गुरु भाइयों को पत्र लिखते हैं। उस पत्र में वो क्या लिखते हैं?
He is telling, if you can kindly bring one set of Radha Krishna deities, we shall build a very gorgeous temple for Radha Krishna in New York City, and we can train all these young American boys and girls. How to worship deities very nicely.
वो उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप कृपया करके मुझे एक सेट राधा कृष्ण का भिजवा दीजिए और यहाँ पे न्यूयॉर्क शहर में बहुत भव्य मंदिर बनाएंगे राधा कृष्ण का और यहाँ पे मैं अमेरिकी बच्चों को अमेरिकी लड़कों लड़कियों को मैं सिखाऊंगा आर्चर विग्रह की पूजा।
So we have to understand why Srila Prabhupada is focusing on Archer Vigraha even though हरे नाम हरेनाम केवलम कलौ नास्त्येव गति अन्यथा दैट इज द एज ऑफ कली दैट द चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड अलोन कैन रिमूव ऑल फॉल्ट्स।
यद्यपि यह बताया गया है कि हरे नाम एव केवलम कलयुग में मात्र जो हरि नाम के द्वारा हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी आर्चर विग्रह पूजन के लिए विशेष जोर देते हैं। इसे हमें समझना पड़ेगा सर वो क्यों कह रहे हैं।
So in the purport, again Srila Prabhupada is so nicely talking about why Archa Vigraha, Archana Seva is very important for even Kali Yuga.
तो तात्पर्य प्रभुपाद जी जो है विशेष रूप से यह हमें समझा रहे हैं कि कलयुग में भी आर्च विग्रह की पूजा करना अर्चना विधि का इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों है?
One might ask, then what is the necessity of being initiated?
तो यह कोई पूछ सकता है कि दीक्षा लेने की क्या आवश्यकता है?
The answer is that even though the chanting of the holy name is sufficient to enable one to progress in spiritual life to the standard of love of God, one is nonetheless susceptible to contamination because of possessing a material body.
तो इसका उत्तर यही है कि यद्यपि पवित्र नामोच्चारण से आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होती है जिससे भगवत प्रेम का पद प्राप्त किया जा सकता है किंतु भौतिक शरीर होने से मनुष्य भी कलमश ग्रस्त हो सकता है।
Consequently, special stress is given to the Archana Vidhi.
फलस्वरूप अर्चन विधि पर विशेष बल दिया जाता है।
One should therefore regularly take advantage of both the Bhagavata process and the Pancharatriki process.
अतः मनुष्य को चाहिए कि भागवत विधि तथा पांचरात्रिक विधि इन दोनों का ही लाभ उठाए।
So this is so revealing It is giving new, it is throwing new light to us.
यह जो है हमें एक नया प्रकाश दे रहा है, हमें एक नया दिशा दिखा रही
है. It was because of this reason that Srila Prabhupada built not just an ashram, but he always built a mandira as the heart of the ashram.
इसलिए प्रभुपाद जी ने कहीं भी आश्रम जो है स्थापित नहीं किया, उन्होंने एक मंदिर स्थापित किया और मंदिर में के बीच में आश्रम घर रखा जो कि हृदय था उस मंदिर.
And he designed the entire day of an average ISKCON devotee, all centered around Krishna, Krishna's Akshamurti.
तो उन्होंने जो है भक्तों की दिनचर्या इस तरह रखी कि पूरा का पूरा समय जो है उसका केंद्र बिंदु हो भगवान श्री कृष्ण के आर्चा विग्रह.
Sometimes what happens, we go out on Harinams.
तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बाहर जाते हैं हरिनाम संकीर्तन करने के लिए.
And then we start distributing the books.
और वहां पर हम पुस्तक वितरण करते हैं.
And we stay late in the night.
और हम रात को देर तक जागते हैं.
And then we return back to the ashram very late.
और हम आश्रम बहुत देर से आते हैं.
Now imagine a situation where you have only the ISKCON ashram. But you don't have the temple.
तो ऐसे आप समय की आप परिकल्पना कीजिए कि यहाँ पे कोई टेम्पल नहीं, कोई मंदिर नहीं, हमारा आश्रम है.
So who will get up early in the morning?
तो सुबह कौन जल्दी उठेगा?
Nobody will get up because everybody is tired. They did not service. But if the mandir is there, if it is summer time, 4:15. And if it is winter time, 4:30, boom!
तो रात्रि में इतने थके हुए होते हैं कि अगर सोएंगे तो वो सुबह नहीं उठ पाएंगे अगर मंदिर नहीं होगा तो. लेकिन ISKCON के में बीच में मंदिर होने से क्या होता है कि जो ग्रीष्म काल होते हैं वो 4:15 बजे और जो शरद ऋतु होता है उसमें 4:30 बजे संघ बसता है.
इमीडिएटली ब्रह्मचारी गृहस्थास
इसलिए जितने ब्रह्मचारी होते हैं गृहस्थ में रहने वाले भक्त लोग हैं सन्यासी गण हैं वो भागे भागे आते हैं आर्ष विग्रह का दर्शन करने के लिए उनका पूजा करने के लिए क्योंकि क्योंकि बीच में जो हृदय है वो मंदिर का वो भगवान की आर्ष विग्रह है अतः इस तरह से संभव होता
है. And because they have already participated in the Mangala Arati, immediately after Mangala Arati, they start chanting Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. And by the time of Darshana Arati, Shringara Darshana, practically they have completed their accepted rounds of chanting the Hare Krishna Mahamantra.
तो इस कारणवश क्या होता है कि जब वो मंगला आरती करते हैं तो उसके बाद वह हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और इसलिए वो अपने जो जो माला है उनकी पूरी प्रस्तावित माला उसको पूर्ण करते हैं और फिर वह श्रृंगार आरती गुरु पूजा करते
हैं. And because they have chanted the holy names of the Lord, they are all completely energized.
तो चूंकि उन्होंने पूर्ण रूप से हरिनाम का उच्चारण किया है इसलिए वह बहुत ही शक्तिशाली महसूस करते हैं.
At once they have darshan of the deities, they worship the guru, the jagat guru. And because they have worshipped Jagat Guru with great sincerity, what happens within the heart? Divya Gyan Gude Prakashite.
चूंकि उन्होंने आर्ष विग्रह का दर्शन किया जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी का उन्होंने गुरु पूजा किया इसके कारण क्या हुआ उनके हृदय का दिव्य ज्ञान हृदय में जो दिव्य ज्ञान है वो प्रकाशित हुआ.
And therefore, now the devotee has Divya Gyan, so he has to listen to Bhagavatam. and the Bhagavatam does not become a treasury. It does not become a forced affair. It becomes Tushyanti cha Ramanti cha. They begin to enjoy.
क्योंकि उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ तो उसके बाद श्रीमद् भागवतम क्लास होती है, कक्षा होती है, उसमें वह जो कक्षा सुनते हैं तो बहुत ही ध्यान पूर्वक हृदय से सुनते हैं, कोई भी उनमें ऐसा नहीं कि कोई बलपूर्वक उनको बिठा करके भागवत सुना रहा
है।
तो फिर भागवत कथा का श्रवण करते करते उनको इतना अच्छा लगता है कि भागवत श्रवण करने के बाद वो हवा में उड़ रहे होते हैं और उड़ते उड़ते वो प्रसाद हॉल में चले
जाते हैं। The qualified Brahmana cooks who are pure in their thought, word and deed, they have very lovingly prepared halava, puri, rice, dal, sabji, wide variety of other prasadam, bhoga, which has gone inside the altar. And because the Lord is so wonderful, each of the senses can do the work of the other senses to fullest extension. Just by seeing and smelling the bhoga, the Lord eats and yet he leaves the full plate of bhoga's prasadam.
So when we go to prasadam hall, we get the mahaprasad. What is the mahaprasad? The mahaprasad is the bhog of God. और ब्राह्मण दीक्षित भक्तों ने बना बहुत ही प्रेम के साथ जो कि मनसा वाचा और कर्मणा से शुद्ध है और इस तरह से वो फिर भगवान उसको भोग लेते हैं। तो भगवान की जो इंद्रियां हैं वो सारी इंद्रियां कुछ भी कर सकती है, मात्र शोक करके और देख करके वो भोग को लेते हैं और पूरा का पूरा उसे छोड़ देते हैं प्रसाद के।
अंगानी यस्य सकलेन्द्रिय वृत्ति मानन्ति पश्यन्ति पानन्ति कलयन्ति चिरं धगन्ति गोविंदम आदि पुरुषम तमोगुण जानी पराशर शक्ति विविधाइव श्रूयते स्वाभाविकी नाम बल क्रिया च। सो इन दिस वे द शास्त्रास आर वेरी क्लियरली टेलिंग अस दैट ईच ऑफ द अंगस ऑफ द लॉर्ड, ईच ऑफ द एनर्जीज ऑफ द लॉर्ड कैन डू ऑल द अदर वर्क ऑफ ऑल द अदर एनर्जीज पुट टुगेदर। सो देयरफॉर द लॉर्ड इज सो वंडरफुल दैट इवन द He is simply here in the form of a murti. He is not different from the original Lord who is in Golok Vrindavan.
So, Bhagavan Shri Krishna itne kripalu hain ki yahan pe hamare beech mein murti ke roop mein upasthit hain. Vah jo Golok Vrindavan mein Bhagavan Shri Krishna hai, wo dono abhinn hain. Aur Bhagavan ki indriyan jo hain, wo kisi bhi indriyan ka koi bhi karya kar sakti
hai. I don't think only the pujari who is ringing the bell and offering the arati is doing deity worship. Never think that. All the devotees who are standing in front of the Lord in the temple hall, clapping, dancing, and simply smiling and praying, they are all doing personally deity worship.
So, ऐसा मत समझिए कि जो पुजारी अंदर altar hall में घंटी बजाना है, चावल दिखा रहा है, तो वही जो आचार विग्रह की पूजन करना है। बल्कि जितने भी लोग टेम्पल हॉल में हैं, ताली बजा रहे हैं, नृत्य करते हैं, मात्र मुस्कुरा भी रहे हैं, वास्तविक रूप से वह भी इस पूजा अर्चन कर रहा है, आचार विग्रह की सेवा कर रहा है।
How do we understand this?
तो यह हम कैसे समझ सकते हैं?
For that we have to understand what is archana. Archana means सेवा।
तो हमें यह पहले समझना पड़ेगा कि अर्चन का क्या मतलब है। अर्चन शब्द का अर्थ है सेवा।
इन द मेन ट्रांसलेशन इट इज मेंशनड एज 16 उपचारास, षोडश उपचारास, ऑफरिंग षोडश उपचारा टू द लॉर्ड इज पार्ट ऑफ द अर्चना प्रोसेस।
तो अनुवाद में 16 षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना ऐसा बताया है।
सो इट इज नथिंग बट सर्विस, सेवा।
यह कुछ भी नहीं, मात्र सेवा ही है।
इट इज मेंशन्ड इन श्रीमद् भागवतम 11th canto that anybody who stands in front of the Lord and sings melodiously or dances very gracefully, he is actually doing service to the Lord and therefore he is also a pujari.
तो ऐसा श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में बताया गया है कि जो भी भगवान का गायन करता है, कीर्तन करता है, वह भी पूजा ही एक तरह से करता है।
That is why Srila Prabhupada was very particular that one should not dance in a very odd way. So he taught all these kind of devotees what is known as the Swami steps.
तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि जितने लोग भी नृत्य करें वो अच्छी तरह से करें, उन्होंने स्वामी स्टेप भी हमें दिया। वो नहीं चाहते थे कोई उल्टे सीधे तरीके से नृत्य करें।
Some devotees, nevertheless, they become too excited. And then I saw one devotee yesterday. He had a long hair. Doing this.
कभी-कभी होता है कि कोई भक्त बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं। कल प्रभु जी बता रहे हैं भक्त जिनके लंबे लंबे बाल थे और अपने बालों को घुमाए जा रहे
हैं। It's okay, just understand sometimes. But it should not become every day of the
year. ठीक है, एक दिन चलता है, लेकिन प्रतिदिन ऐसा करना अच्छा नहीं।
So in this way, we have to understand that we should also be as clean or as pure as the devotee who is entering the altar, because we are all part of the pujari department.
तो इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें भी उतना ही शुद्ध होना है जितना वह व्यक्ति जो पूजा कर रहा है, पुजारी है, क्योंकि हम सभी जो है पुजारी विभाग के अंदर ही आते हैं।
Since all of us are pujaris, we should also understand that we should avoid all the offenses that are there in the offenses to be avoided during archana paddhati.
तो चूंकि हम सारे के सारे पुजारी हैं, तो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक यह देखना चाहिए कि हमसे कोई अपराध ना हो जाए अर्चना विधि के द्वारा।
We should not think वो पुजारी है, so let him avoid all the offenses in archana paddhati. Maybe he can do whatever he want. No.
ऐसा बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि वह जो पुजारी है उसके लिए ही मात्र सिर्फ अपराधों से बचना है। हम तो पुजारी नहीं है, हमें तो अपराधों से बचने की आवश्यकता नहीं।
So one of the offenses that it is being mentioned in the shastras and listed by the Goswami so lovingly under the direction of Chaitanya Mahaprabhu is that one should not speak lie.
तो एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है सेवा अपराध है कि यह है कि कोई भी व्यक्ति जब भगवान के समक्ष आता है तो वह झूठ ना बोले।
So if we do not tell lies, then 50% of the problem in today's world is gone.
तो अगर हम झूठ बोलना छोड़ दें तो विश्व की 50% समस्याएं अपने आप सुलझ जाएंगी।
Everybody today is talking about corruption in India, right?
तो भारत वर्ष में जो है सभी लोग चर्चा करते हैं भ्रष्टाचार।
So what is corruption? Corruption is nothing but falsity. We receive money, but we don't tell anybody.
तो भ्रष्टाचार का क्या मतलब? भ्रष्टाचार का मतलब झूठापन। हमें पैसे मिलते हैं, लेकिन हम किसी को नहीं बताते कि हमें पैसे।
So in this way, if we can simply follow all the recommendations of Akshana Vidha, then we become very strong to actually chant holy names of the Lord very nicely.
तो इस तरह से अगर हम सारे विधि विधानों का पालन सही तरीके से करते हैं अर्चना विधि की, तो वास्तविक रूप से यह होगा कि बहुत ही सशक्त हो जाएंगे और हरिनाम को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे।
See, one of the offenses, to chastise someone before the deity or to use harsh words before the deity, we should not do this.
एक अपराध यह है कि किसी को किसी को चिल्लाना किसी को डांटना आर्चा विग्रह के समक्ष.
Why? Because the Lord is there. But the Lord who is the supreme controller and who knows everything, when he is there standing, he knows the apradh that has been committed by the other person. So why we should take the position of the boss and shout at?
तो हमें यह समझना चाहिए कि भगवान जो है पूर्ण रूप से नियंत्रण में है, परम ईश्वर है, पूर्ण नियंत्रक है, तो हम भगवान की जगह क्यों लें? जब उस व्यक्ति ने गलती की है तो यह भगवान सबको समझ रहे हैं, तो भगवान की जगह लेकर हम उस व्यक्ति को क्यों डांटें?
But certainly we should take the position of the servant of the Lord and then approach that devotee very humbly, namrata, prudh, and tell him, Prabhuji, this is wrong, Prabhuji. We should not be doing like this. Kindly forgive me for pointing out this to you, but then it can create great amount of turmoil, problem in the temple, in the institution. Kindly don't do this.
तो भगवान के जगह लेने के बजाय हमें भगवान के सेवक का जगह लेना चाहिए और उस व्यक्ति को जाकर बोलना चाहिए कि बहुत ही नम्रता पूर्वक जाकर बोलना चाहिए, प्रभु जी आपने जो किया उसमें आप देख सकते हैं, और बहुत ही इस तरह से बोले कि ताकि वो व्यक्ति को बुरा ना लगे और उसकी गलती भी ठीक हो.
So in this way, if we very humbly present exactly according to whatever the Shastra is recommending, then there is no difference between ISKCON, Punjabi Bar and Vaikuntha planet.
तो अगर हम सही तरीके से सारे विभिन्न विधानों के द्वारा जैसे शास्त्रों में बताए गए हैं अगर वैसा पालन करते हैं तो इस कौन पंजाबी बाग और वैकुंठ लोक में कोई भेद नहीं रहता
है. It will become equal to that and everybody will be having great love, great affection for each other and always consider the other person to be the master and therefore have a real meaning of the word Prabhu, Prabhuji.
अगर ऐसा होता है तो हमें एक दूसरे के प्रति वास्तविक प्रेम की भावना आ जाएगी और हम एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं तो इसका जो वास्तविक अर्थ है उसको हम सही तरीके से अपना पाएंगे.
So by serving the deity, we are learning how to be a good servant.
तो भगवान की सेवा करके हम यह सीखते हैं कि हम अच्छे सेवक कैसे बन सकते हैं.
And if we can become a good servant, then that is the best qualification for us to go back to Godhead.
अगर हम एक अच्छा सेवक बन जाते हैं, तो ये सबसे बड़ी योग्यता है भगवत धाम जाने के लिए.
And if you are not a good servant, and if you are a bad servant, then will you employ him? Will you employ a person who is not a good servant, who is always coming late for driving your car? How many of you will have that servant as your driver?
तो आप लोगों से कैसे लोग ऐसे सेवक को रखेंगे ड्राइवर के रूप में जो हमेशा लेट आता है?
And then there is an attendant, a peon in the office. Whenever you want water for drinking, you ring the bell, and then after 3.5 hours, he will give you one glass of water. So how many of you will have that kind of indisciplined servant as your servant?
तो आपके ऑफिस में आपने एक ऐसे चपरासी को रखा है जब आप घंटी बजाते हैं तो 3.5 घंटे के बाद वो पानी लाता है, तो ऐसे चपरासी को कितने लोग रखना चाहेंगे अपना ऑफिस में?
But let us in this special day, this so-called New Year day, let us look inside our heart and see whether we are good servants of Krishna. And if we are not good servants, then we should make a sankalpa that we become better servants, better than what I was on 31st December 2013.
तो तथा कथित नव वर्ष में हमें यह देखना चाहिए, अपने हृदय में झांकना चाहिए, आकलन करना चाहिए, क्या मैं वास्तविक रूप से सही सेवक हूँ, अच्छा सेवक हूँ या बुरा सेवक हूँ? तो मुझे ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि जो 31 दिसंबर 2013 में जैसा मैं था उससे अच्छा बनकर, अच्छा सेवक बनकर दिखाऊंगा.
And if we can just improve every day, little by little, step by step, then one day we can be so humble that we will think we are the most fallen servant really. Not, oh Prabhu, no Prabhu, I am very fallen Prabhu. But actually we are thinking, alright, what is the point of? What are these? Not that kind of. Really we will feel, I am really fallen. And with that wonderful attitude, it becomes a sadhu bhushana, and then we can really become a sadhu.
तो ऐसा और धीरे धीरे ऐसा नहीं कि एक दिन में धीरे धीरे क्रमशः विकास होगा और हम एक अच्छे सेवक बनेंगे और फिर हम अपनी स्थिति को जान पाएंगे कि हम वास्तविक रूप से कितने गिरे हुए हैं लेकिन अभी की स्थिति ऐसी है कि हम बोलते तो हैं अपने मुख से कि मैं बहुत ही गिरा हुआ हूँ लेकिन अंदर में समझते हैं कि हम बहुत ही अच्छे हैं लेकिन अगर ऐसे इन पद्धतियों का इन विधि विधानों का हम पालन करते हैं भगवान के अच्छे सेवक बनते हैं और विनम्र बनते हैं और यह जो है शांत भूषण है
So in this way, let us all resolve on the New Year Eve that we will all become real servants. And if any devotee gives us any service, we will very nicely do that service, perform that service to the best of our ability. And if 10 services are being allotted to us, very humbly tell the devotee who is giving us 10 services, Prabhuji, I will do this, but I don't think I will have time for doing this.
तो ऐसा हम धीरे धीरे अगर करते हैं तो नव वर्ष में हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अच्छा से अच्छा भक्त बने और जितने भी भक्त लोग हैं हमें सेवा देते हैं उन सारी सेवाओं को हम बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत अच्छे तरीके से करें और अगर कोई भक्त हमें एक ही साथ 10 सेवा दे देता है तो उनको बोलना चाहिए प्रभु जी मैं ये कर सकता हूँ लेकिन ये नहीं कर सकता
And we should tell him, if you can kindly help me in planning my time, then I follow your instruction and I will do all the 10 also and probably do more.
तो उनको हम बता सकते हैं कि कृपया करके आप मुझे ऐसी सहायता दीजिए कि मेरे समय का थोड़ा प्रबंधन कीजिए और मैं आपकी सारी सेवा कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं
And how about telling like this? Hey, Prabhu, क्या? आपको मालूम नहीं क्या? हमारे कितना हाथ है? सिर्फ दो ही है। दस काम दे देंगे, दस सेवा, सभी सेवा है। मैं किसान करूंगा? Instead of this, we should approach the devotees. Because the devotees who are giving us seva, they were also like us. We should not forget that. They have done all what we are doing today. So we should go approach them and then sit with them and then discuss with them how we can achieve all the 10 sevas and still have time for the 11 seva also. So in this way, if we humbly become servant, real servant, then everybody will begin to love us and everybody will become our friends and well-wishers.
जो हमें वो सेवा दे रहे हैं वो खुद भी हमारे जैसे उन्होंने ये सारी सेवा की हुई है और उनके साथ हम जाते हैं उनसे पूछते हैं कि आप मेरा हेल्प कीजिए मेरे दो ही हाथ है मेरे 10 हाथ तो है नहीं मैं आपकी सारी चीजें करूंगा लेकिन मुझे आपके समय प्रबंधन में मेरा सहायता की अगर ऐसा कहते हैं तो हमारे संबंध भी अच्छे बनते हैं और हम उनकी सेवा भी कर पाते हैं और धीरे धीरे क्रमशः जो है हम अच्छे भक्त बनने का अच्छे सेवक बनने का प्रयास करते हैं
सो द पर्पस ऑफ द इस्कॉन मूवमेंट एज प्रपाउंडेड बाय श्रील प्रभुपाद इज टू क्रिएट फर्स्ट क्लास ब्राह्मणा
इस्कॉन संस्था की जो जैसे कि प्रभुपाद जी ने शुरू किया है उसका जो मुख्य उद्देश्य वह है कि वो उच्च श्रेणी के ब्राह्मणों को बनाए
ब्राह्मणा मींस वन ऑफ द बेस्ट सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड द सोसाइटी
ब्राह्मण का अर्थ है उच्च श्रेणी का सेवक भगवान श्री कृष्ण का और समाज का
ब्रह्म ज्ञान जानाति ब्राह्मण वन हु नोज ब्रह्म ज्ञान एंड हु इज ऑल्सो operating on that platform is a brahmana Yadanayarana padana padana dadati pratajnati. One who is always reading the scriptures and helping others read the scriptures, and who is doing the yajna and helping others through the yajna, and who is receiving donations and also giving out charity, only such person is a brahmana. So we can all become nice brahmanas if we simply take seriously all the instructions of Srila Prabhupada with regard to both Pancharatrika Vidhi and Bhagavata Vidhi.
हम सभी को चाहिए कि हम अच्छे अच्छे ब्राह्मण बने, और ब्राह्मणों का कर्तव्य है पठन पाठन करना, खुद भी पढ़ाना दूसरों को पढ़ाना, यजन याजन करना, खुद यज्ञ करना दूसरों को यज्ञ कराना, दान देना फिर दान लेना। तो प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार, शास्त्रों की शिक्षा के अनुसार हमें चाहिए कि हम कुछ श्रेणी का ब्राह्मण बने।
हरे any comment or
is he going to tip me to a Krishna?
Thank you for your wonderful explanation. I just want a little clarification on one point. If you read from the Bhagavad Gita, your problem is mentioned, although chanting is sufficient, but one is susceptible to contamination of his body. So, can you explain more what kind of susceptibility to contamination which can be just purified by deity worship?
Prabhupada ji ne yahan tatpurya bataya hai ki harinam apne aap mein to sab kuch, lekin hame jo bhautik sharir bhav hai uske sanbandh grast ho sakta hai. Roji ka prashn hai ki kaise hum kaun se karma ko prapt karte hain.
So how contamination come?
Ye kalmas kis tarah se aate hain?
This is the main question.
Yeh hai mukhya prashn.
You see, the three modes of material nature are there, and because of the influence of the three modes of material nature, we will very easily slip from sattva guna to raja guna to tamo guna.
So ki hum bhautik prakriti jo hai teen gunon se bani hai, sattva guna raja guna tamo guna se, to isliye yeh bahut hi swabhavik hai ki hum sattva guna se raja guna mein niche gir sakte hain ya raja guna se tamo guna mein niche
gir. I actually gave an example of tamo guna. From rajoguna to tamoguna, and that example was we go out and with great enthusiasm, or rather more enthusiasm, we perform some devotional service outside in the form of distributing books and etc. And then when we come back, we enter tamoguna.
So I have just told you that we go to pustak vitran, we go to sahapurvak pustak vitran. लेकिन जब वापस आते हैं फिर तमोगुण को प्रवेश करते हैं.
And because we are in tamoguna, we would have entered tamoguna. Then the harinama, which we know is the most important process of getting love of Krishna, we will begin to ignore that.
लेकिन चूंकि हम तमोगुण में प्रवेश कर चुके हैं, तो जानते हुए कि हरिनाम जो है वो सर्वश्रेष्ठ विधि है, लेकिन हम उसको नजरअंदाज करने लगते हैं.
And we should also understand that this deity, if the deity is there, then we are forced to get up, we are forced to maintain certain standard, we are forced to clean the temple. If deity is not there, then आस्तो इंद्रा के बाद चलो कमाने.
तो ऐसा हम जानते हैं कि चूंकि आर्षा विग्रह हमारे बीच में है, हमें बलपूर्वक जो है वह यहाँ की सफाई करना, सुबह जल्दी उठना करना पड़ता है. अगर ऐसा ना हो तो लगता है चलो आज तो ठीक ठाक है.
So the आर्षा विग्रह, which has been so lovingly established by the pure devotee, it becomes a means, dwara, for us to rise our guna level from tamo to rajo to sattva and then to shuddha sattva.
तो चूंकि आर्षा विग्रह है जो है वो भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा स्थापित किया गया है, जब हम इनकी सेवा करते हैं तो तमोगुण से ऊपर उठकर रजोगुण, रजोगुण से ऊपर उठकर सतोगुण, सतोगुण से ऊपर उठकर शुद्ध सत्व है।
And please do not think that this is some idol. This is not. The Lord is personally standing there. Just like Prabhupada gave the example of post box. He said, if you go and keep on red box and write it as post box also very nicely, and even if people put post inside that, it will not reach the destination. Whereas, if the postal department keeps a red box, and the red box may not be so nice as your brand new red box, and the lettering may not be as perfect as your lettering, and yet, the letter that reaches that post box immediately reaches destination.
ऐसा यह नहीं समझना चाहिए कि कोई पत्थर की मूर्ति है, लकड़ी की मूर्ति है, इसको मैं उधार कर समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक बड़ा सा डब्बा रख देते हैं पोस्ट बॉक्स का और अपने तरफ से रखते हैं उसमें बहुत ही सुंदर रखते हैं उसको लिख भी देते हैं पोस्ट बॉक्स में, लेकिन उसमें आप चिट्ठी डालेंगे कोई भी चिट्ठी उसमें डालेगा तो वो अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त नहीं करेगा, लेकिन पोस्टल डिपार्टमेंट अगर वहाँ पे एक डब्बा रखता है उसमें गंदे तरीके से पोस्ट बॉक्स लिखता है और डब्बा अच्छा भी नहीं है फिर भी अगर उसमें कोई चिट्ठी डालता है तो अपने गंतव्य स्थान
Because the postal department post box, large dabba, is authorized, whereas your dabba, our dabba, is unauthorized.
ऐसा क्या होता है कि your postal department का जो डब्बा है वो अधिकृत है उसको एक मान्यता प्राप्त है लेकिन हम जो डब्बा रखते हैं उसमें कोई मान्यता नहीं।
So these are authorized forms of the Lord established. According to certain vidhi that has been given in shastras. So if we just simply come and stand in front of them, automatically our mind becomes humble, our heart begins to join, and then our head begins to fall down. So it's just a way that we can actually get result out of worship. And this is the reason why Prabhupada is writing that Harinam alone is not sufficient. Even though it is sufficient, it is we cannot utilize it fully.
So, इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मूर्ति को संहार नहीं होती वो अश्वमित्रा होती हैं और बहुत ही सटीक विधि विधानों के द्वारा भक्तों के द्वारा स्थापित की जाती हैं। अतः कोई अगर भक्त आते हैं कोई व्यक्ति आता है तो भगवान के दर्शन करते ही वो विनम्र बन जाता है उसके माथा झुक जाता है उसका हाथ जुड़ जाता है।
I can give another example. A normal man, a healthy man, if he has got 5 grams sabji, it is sufficient for him. So for him getting all kinds of energy to do normal work.
तो एक स्वस्थ व्यक्ति है उसके लिए चावल दाल सब्जी चपाती जो भी वो खाना खाता है वो उसके लिए सफिशिएंट है अपने कार्य करने के लिए।
Whereas somebody who is sick, he requires extra dosage of vitamins, extra injection, some tonic, everything.
लेकिन जो व्यक्ति बीमार है उसको अलग से विटामिन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, कुछ टॉनिक चाहिए।
So, a nice first-class devotee of the Lord, who has already established himself as a devotee of the Lord, real devotee of the Lord, for him, Harinam alone is sufficient.
तो इस सब यह समझ सकते हैं कि जो कि उच्च श्रेणी का भक्त है, उच्च कोटि का भक्त है, वो उस स्थिति को प्राप्त कर चुका है, तो उसके लिए जो हरिनाम ही काफी है।
Whereas we require extra vitamins, injection, tonic, and they are all provided by the Acha Vigraha, very lovingly given to us by the spiritual master.
लेकिन हमें विटामिन चाहिए, टॉनिक चाहिए, तो जो हमारे गुरु हैं, वो स्थापित करते हैं Acha Vigraha का, ताकि हम उनसे प्रेम अनुकूल कर सकें।
Does it answer your question? Shri Vatala Prabhu, anything you want to add? Grandana Srimad Bhagavatam. Jagat Joshi Ka Prabhupada Ki. Ananta Koti Vaishnavani Ki. Jai Go Prema.